प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अरपा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। इस कड़ी में आइए आज सुनते हैं सिविल लाइंस बिलासपुर के CSP श्री उमेश गुप्ता का प्रेरक उद्बोधन।
आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ये जो बिलासपुर जिले में परीक्षा और बोर्ड एग्जाम से उत्पन्न तनाव से ग्रसित बच्चों के लिबरेशन के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री अवनीश शरण सर से स्टार्ट हुई थी ये लेक्चर सीरीज, या कह लीजिए एक फेसबुक लाइव की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे जो एग्जाम से उत्पन्न तनाव या स्ट्रेस का माहौल होता है उसको इवेट कर सकते हैं और आप इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे बेहतर बनाकर रख सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक नया आज सीरीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम के स्ट्रेस, एग्जाम के रिजल्ट को लेकर स्ट्रेस क्यों आता है। स्ट्रेस के देखिए एक जो मेन रीजन होता है वो होता है कि जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, जब हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं, या फिर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तब स्ट्रेस जो है जनरेट होता है। तो सबसे पहले हमें इसके कारण को समझना पड़ेगा और जब हम किसी भी चीज के कारण को समझ जाते हैं तो उसका समाधान या फिर उसका सॉल्यूशन अपने आप निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस है उससे आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस है। जब हमारा माइंड एक डायरेक्शन में काम करता है, जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है, लगता है कि इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय जरूरत होती है कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। वो सपोर्ट सिस्टम आपके फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, आपकी किसी ऐसी हॉबी का हो सकता है, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। सभी पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन रहता है कि हर एक बच्चा जो है वो टॉप करे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि एग्जाम में हर एक स्टूडेंट फर्स्ट आ सकता है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा, बाकी सब नीचे ही आएंगे। तो आपको इस रियलिस्टिक रियलिटी को जो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सभी कहते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब ही कुछ अलग निकाला जाता है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि जो आप चाह रहे हैं चीजें उसके अकॉर्डिंग ही होंगी, जी बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। पॉजिटिविटी का मतलब होता है रियलिस्टिकली पॉजिटिव रहना, मतलब हम जो चाह रहे हैं वैसा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। जैसे एग्जाम की बात मैं करूं तो आप एग्जाम के लिए अपना कंप्लीट एफर्ट लगा दीजिए। अगर आपने अपनी तैयारी में, एग्जाम में परफॉर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बाद भी रिजल्ट अगर आपके अनुरूप नहीं आता है तो उसमें खुद को जिम्मेदार ठहराने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशली पेरेंट्स से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपने बच्चों को कभी भी इस तरह की सिचुएशन में ना डालें। उन्हें समझाएं कि लाइफ एक बहुत बड़ा मैराथन है, लाइफ बहुत बड़ी है, हमारी समझ के इनफैक्ट परे है लाइफ, जो हम समझते हैं उसके बियॉन्ड है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आप दुनिया में या फिर हमारे देश के ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो अपने लाइफ के किसी एक मोड़ पर फेल्योर थे, कंप्लीट फेल्योर थे, लेकिन उन्होंने अपने फील्ड में या जो उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट था वो परस्यू किया, आज वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है सचिन तेंदुलकर जी का। अगर उन्हें पढ़ाई कराया गया रहता, अगर उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाई में बोला होता कि आप अच्छे नंबर लेके आओ, टॉप करो, तो नहीं पॉसिबल था। उन्होंने अपना पैशन, अपना जो इंटरेस्ट था क्रिकेट परस्यू किया और वो दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन बने, भारत रत्न भी मिला उनको। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बेस्ट कर सकते हैं और आज के टाइम पे स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज जो है जो अनलिमिटेड है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण सर, उनका 10th क्लास में 45% मार्क्स थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आगे जाकर बहुत अच्छा किया और आज वो आईएएस बने। इसी तरह ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाते। आप अगर इस एग्जाम सिचुएशन में स्ट्रेस फील कर रहे हो, स्पेशली वो बच्चे जो जिनको लगता है कि एग्जाम खराब हो गया है, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिजिटल वर्ल्ड का यूज कीजिए और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स देखिए। कई सारे टेड टॉक्स हैं, जोश टॉक्स हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी इंसान लाइफ के इनिशियल डेज में फेल रहता है, लेकिन आगे जाके उसने बहुत अच्छा किया है। सेम चीज मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा। जैसे अगर आपने नहीं सुना तो अरुणिमा सिन्हा का नाम जरूर गूगल पे टाइप करके सर्च कीजिए। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे या उनका एक जोश टॉक पड़ा हुआ है, उस टॉक को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचेंगे कि कोई इंसान इतना इतनी खराब हालत में होने के बाद भी कैसे इतना सब कुछ अचीव कर सकता है। उनका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि जब वो एक एग्जाम की इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है तो ट्रेन से गिरकर उनका पैर कट जाता है। अब उसके बाद उनको लगता है कि मैं तो लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। उसके बाद वो 2 साल तक बेड रिडन रहती है और फिर उसके बाद जाके एक माउंटेनियर से मिलते हैं और आगे जाके उन्होंने माउंटेनियरिंग सीखी बिना पैर के। एक पैर जो है उनका घुटने तक काट दिया जाता है एक्सीडेंट की वजह से, बिना पैर के वो माउंट एवरेस्ट का सबमिट करते हैं। और जो पूरी पूरे विश्व के जितने भी कंटिनेंट्स हैं, जितने भी द्वीप हैं, उन सभी का उन्होंने जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पे उन्होंने चढ़ाई कर रखी है। इस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को लेके अपने लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तब जाके कहीं आप इस स्ट्रेस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो एक और तरीका होता है कि अपने माइंड को कहीं और पे लगाना है। जैसे आज के टाइम पे मेडिटेशन जो है बहुत ही कारगर है। जहाँ सोशल मीडिया का जमाना है, हम सोशल मीडिया के पोस्ट से, किसी के फोटो से, किसी के पिक्चर से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि हमारा माइंड फॉर दैट मोमेंट कुछ समय के लिए डाइवर्ट होके उस सिचुएशन में चला जाता है। इससे बचने का बेस्ट तरीका यह है कि आप कोई भी एक मेडिटेशन कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट डेली निकालिए। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड एक एक जगह पे फोकस होके, एकाग्रचित होके, और फिर आप चीजों को बारीकी से देख पाते हैं। जैसे कोई भी समस्या इतनी बड़ी होती है, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर लें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, तो वो समस्या बहुत ही आसान लगने लगती है और फिर उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप इस स्ट्रेस सिचुएशन में आपको कोई ना कोई एक ना एक मैकेनिज्म निकालना है, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके कोई भी आपका दोस्त, भाई, सिबलिंग्स, कोई भी है जो ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि फंस रहा है, आप प्लीज उसकी मदद कीजिए, उसको ऐसी चीजों से अवगत कराइए। हमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो उस सिचुएशन पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस इंसान को ऐसे ऐसी चीजें खोल के रखिए जिससे कि वो इस स्ट्रेस सिचुएशन में कोप अप कर सके। आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ। इसमें देखो, पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं, जो पुरानी कहानियां हैं, अकबर बिरबल की कहानियां, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, या टॉल्स्टॉय की सिंपल छोटी छोटी कहानियां, जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उससे बच्चों को, स्पेशली 9th 10th 11th 12th के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। उनको इस स्ट्रेस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत अच्छा साधन होता है छोटी छोटी कहानियां। आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे वेब सीरीज मूवीज चलती रहती हैं, जिसमें बहुत ही कम टाइम मिल पाता है कि हम कहानियां सुने। पेरेंट्स भी मोबाइल फोन में अपने इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास कभी टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाए। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है अकबर बिरबल के बीच की। होता है, जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, हम कह तो देते हैं लेकिन इस बात को खुद नहीं मानते, या कई बार पेरेंट्स या फिर कोई बच्चा जो स्ट्रेस सिचुएशन से गुजर रहा है वो इस बात को नहीं मानता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मेरा विश्वास रखिए, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर बिरबल की कहानी है। अकबर और बिरबल दोनों एक बार शिकार करने के लिए जंगल में निकल रहे होते हैं। दोनों जंगल में जाते हैं, शिकार करते टाइम तीर चलाते हुए अकबर का अंगूठा इंजर्ड हो जाता है, अंगूठे पे इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, उस अंगूठे से खून निकलने लगता है। इस पर बीरबल हंसने लगता है। अकबर बोलता है कि मुझे चोट लग गई और तुम हंस रहे हो। बीरबल कहता है, सर कुछ नहीं, जो है अच्छे के लिए होता है। अकबर को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने सैनिकों को बोलता है कि बीरबल को ले जाओ और रात भर अंधेरे में रखना, सुबह होते ही इसको फांसी दे देना। और ऐसा कहकर वो बीरबल को छोड़कर अकबर अपने बाकी सैनिकों के साथ आगे शिकार करने निकल जाता है। जैसे ही वो थोड़ी देर आगे पहुंचता है, वो शिकार में इतना इतना ज्यादा एंगेज हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है कि काफी तेजी से अपने हॉर्स पे आगे निकलता है। उसके बाकी सैनिक जो है पीछे छूट जाते हैं, तो वो जंगल में अकेला हो जाता है। जंगल में जब वो अकेला होता है तो उसका कुछ उसको आदिवासी मिलते हैं, जो देखते होंगे ना आप लोग फिल्मों में जो हू हा करते रहते हैं, उस तरह के कुछ आदिवासी मिलते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। अब उनकी भाषा तो समझ में आती नहीं है, उसको पकड़ के एक ले जाते हैं अपनी देवी के पास। अब अकबर की बलि चढ़ाने वाले होते हैं। उनका जो मेन जो होता है चीफ होता है, वो डिसाइड करता है कि भाई ये आदमी मिला है, इसको हम भगवान की बलि दे देंगे। ऐसा चलने होने ही वाला रहता है, उसको उसका मतलब गला काटने ही वाला रहते हैं, तभी एक बूढ़े इंसान की, बूढ़े आदिवासी की नजर अकबर के अंगूठे पे पड़ती है। वो बोलता है कि रुक जाओ, ये आदमी अशुद्ध है, इसके शरीर से खून निकल रहा है, इसकी बलि एक्सेप्ट नहीं होगी। ऐसा कहते ही लोग उसकी बलि नहीं देते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। अकबर जब वापस आता है, दौड़ता हुआ भागता हुआ वापस आता है और पूछता है कि कहाँ है। उसको सबसे ज्यादा डर जो सता रहा होता है वो इस बात का होता है कि कहीं बीरबल को फांसी तो नहीं दे दी गई। जब वापस आता है, बीरबल से मिलता है, अपने सैनिकों से मिलता है, तो बीरबल के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने सही कहा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे सुनते ही बीरबल बोलता है कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ भी अच्छा हुआ। इस पर अकबर चौंक जाता है, बोलता है मेरा तो समझ में आता है कि मेरा अंगूठा कट गया तो मुझे बलि नहीं दे गई, तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ, तुमको तो मैंने अंधेरी कोठरी में डलवा दिया, सुबह फांसी देने वाला था। बीरबल बोलता है महाराज अगर आपने मुझे नहीं भेजा होता वापस, तो मैं आपके साथ जाता और आपकी जगह वो मेरी बलि दे देते। इस बात से अकबर चौंक जाता है और बोलता है कि बीरबल तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात, ये जो छोटी सी कहानी है, इस छोटी सी कहानी का मोरल जो है वो ये है कि लाइफ में देखो हमें समझ में नहीं आता, तत्काल अभी करंट सिचुएशन में लग रहा होता है कि ये खराब है, ये अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर किसी की लाइफ में आपके पास हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जो देश के बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक टाइम पे फेल्योर थे, कंप्लीट फेल्योर थे। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मेड इजी गेट की कोचिंग कराते हैं दिल्ली में, या फिर नेक्स्ट आईएएस अभी उन्होंने चालू किया है, उनकी इतनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। वो एक समय पे इंजीनियरिंग सर्विस, यूपीएससी, सिविल सर्विस सारे एग्जाम से फेल हो गए। उन्होंने लगातार 6-7 साल तैयारी की, बट किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनको लगा कि नहीं, हम तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, उनको लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बट आज उन्होंने एक कोचिंग की शुरुआत की और आज उनके अंडर कम से कम 2000 से 3000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, कई 100 करोड़ की कंपनी उनकी स्टैब्लिश हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में एक कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो वो लाइफ का एंड नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लाइफ को एक गेम की तरह लीजिए, मतलब एक ऐसा, मैं तो क्रिकेट के गेम से रिलेट करता हूं कि लाइफ एक क्रिकेट के गेम की तरह है, जहां पे आप बैटिंग कर रहे हो, कोई फील्डर नहीं है, कोई स्टंप्स नहीं है। इस सिचुएशन को इमेजिन करना कि आप एक क्रिकेट के मैदान में बैटिंग कर रहे हो जहां पे कोई फील्डर नहीं है, कोई स्टंप्स नहीं है, और लाइफ है जो आपको बॉल फेंकी जा रही है। बॉल किस चीज की? अपॉर्चुनिटीज की, अवसर की। हर एक टाइम पे आपको एक नया अवसर मिलता है लाइफ में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर जगह पे आपको नए अवसर मिलेंगे। आज से 20 साल 30 साल पहले किसी ने सोचा था कि आज सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी? किसी ने नहीं सोचा था। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पेशली यूट्यूबर्स जो है, यूट्यूब पे वीडियोज बना के लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने ट्रिप्स को शेयर करते हैं, लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, इंटरव्यूज करते हैं। जैसे आज मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, आज से 20 साल पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। आज कितने यूट्यूबर्स हैं जो करोड़ों रुपीस कमाते हैं जस्ट यूट्यूब पे वीडियोस बना के। आज से 20 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था। ये है जो समय समय पर लाइफ आपके सामने अपॉर्चुनिटीज फेंकती रहती है। अगेन मैं उस क्रिकेट फील्ड के सिचुएशन पे आता हूँ जहां पर आप बैटिंग कर रहे हैं, लाइफ है जो बॉलिंग कर रही है। सपोज आप बॉलिंग, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, बॉल मिस हो गई, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज थी, अगर कनेक्ट हो जाता कुछ अच्छा हो जाता, मान लो एग्जाम में नंबर आ जाते, आप टॉप कर जाते, बहुत अच्छे नंबर आ, कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, अपना फोकस लाइफ पे होना चाहिए, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप एग्जाम्पल सोचो किसी अच्छे बैट्समैन का, सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली का ले लेते हैं, क्या उनसे एक बॉल मिस हो गई, क्या वो अगली बॉल के लिए रोते रहते हैं क्या? अगर एक बॉल पे कैच छूटा, बैट्समैन तैयार रहता है, वो खुश होता है कि कैच तो छूटा, अगली बॉल है मेरे पास। सेम आप अपने लाइफ के साथ कीजिए। आप अगर एक एग्जाम खराब हो गया, आप सोचिए नेक्स्ट ईयर, कोई बात नहीं, सही वक्त का इंतजार करना है। जैसे क्रिकेट के मैच में होता है, आपसे एक दो तीन बॉल छूट गई, सिर्फ उसी तरह एक अवसर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा आते ही आपने बैट घुमाया, लगाया सिक्स। सेम यही चीज है जो आपको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ एक चीज को लेके आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जो आपको लाइफ के साथ, अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए मजबूर कर सके। सिर्फ आपको सही वक्त का इंतजार करना है। अगर आप बिलीव करिए, अगर आपने चार बॉल के बाद पांचवी बॉल पे छक्का मारा, सारी बॉल की कसर पूरी हो जाएगी। सेम यही फिलॉसफी, यही फंडा लाइफ में लगा के रखना। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग का। हमारे तरफ सभी लोग बोलते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, मतलब, बट कोई ये नहीं बताता कि पॉजिटिव कैसे रहे, कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअल में, रियलिटी में पॉजिटिविटी क्या होती है। पॉजिटिविटी का मतलब हम सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, ऐसा तो संभव नहीं है। हमें बुरी चीजों से भी इंकाउंटर होगा ही होगा, हमें बुरी चीजें आएंगी, बुरी चीजों को हमें फेस करना ही पड़ेगा। बट उन सारी बुरी सिचुएशंस में भी आप कैसे पॉजिटिव रहते हैं, ये बोला जाता है रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम से रिलेट करते हैं। सपोज आपने कोई एग्जाम में अपना गोल सेट किया कि मैं इस बार 12th का एग्जाम है, मैं 95% लेके आऊंगा। आपने उसके हिसाब से पूरी पढ़ाई करी, पूरी तैयारी करी, बहुत अच्छे से पूरे साल मेहनत किया, लास्ट में भी बहुत अच्छा मेहनत किया, एग्जाम के दिन भी बहुत अच्छा मेहनत किया। बट सब कुछ तो आपके हाथ में नहीं हो सकता है, हो सकता है उस दिन स्ट्रेस की वजह से, किसी ऐसी कंडीशन की वजह से आपसे कुछ स्किप हो गया और आपका 95% नहीं आया, या आपके बच्चे का 95% नहीं आया, मान लो वो 92-93% पे रुक गया, आप क्या करोगे उसको? जिंदगी में हार गए? क्योंकि सक्सेस का मतलब हम ये डिफाइन कर देते हैं कि जो हम चाहते हैं वो अचीव कर लें। अब 95% कोई लाया और कोई 93% लाया, कोई डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कि 93% या 90% लाने वाला बच्चा ज्यादा इंटेलेक्चुअली साउंड हो, ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हो एज कम्पेयर टू दी 95% वाले बच्चे से, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपने सब कुछ सही किया लेकिन रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है, इस टाइम पे बोलते हैं आपको रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा अपना के रखिए। रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग का होता है चीजों को तोड़ तोड़ के देखना। आपने किसी चीज को अचीव करने का टारगेट बनाया, राइट, उसके लिए काम किया, उसके लिए अपना एफर्ट जितना दे सकता था दे दिया, जान लगा दिया उस चीज को पाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो भी अच्छा है। हमेशा इस चीज को दिमाग में रखें कि चीजें हमेशा वैसे नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, चीजें वैसी होती हैं जैसा उनको होना। इस बात को एक्सेप्ट कर लें, तब इसको बोलेंगे रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। ये रियलिटी में है। अब जैसे ही आपके आपका एक एग्जाम, मान लीजिए आप जो चाहते थे 95% चाहते थे नहीं आया, कोई बात नहीं, एक इवेंट था गया, लेकिन 92 इतना सारा अचीव किया है आपने 90% में, उसको भी छोड़ दीजिए, अगर आपने 65% भी ले आया मार्क्स, तो उसके बाद भी आपको समझना चाहिए कभी जीवन में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हुई, बॉल्स आने वाले हैं, अगली बॉल के लिए तैयार रहो, कोई बात नहीं, इसमें कैच छूट गया था, आपका कैच छूट गया था, बच गए, आउट नहीं होना है। एक ऐसा लाइफ, एक ऐसा क्रिकेट का मैदान है जहां पे कोई विकेट नहीं है, कोई फील्डर नहीं है, सिर्फ बॉलर है, आपको बैटिंग कर रहे हो, जहां एक ऐसा खेल है जिंदगी जहां पे आप चाहो भी तो आउट नहीं हो सकते जब तक कि मैदान को छोड़ के भाग नहीं जाते। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैदान छोड़ के नहीं भागना है, डटे रहना है, बैटिंग करते रहना है, क्योंकि लिमिट, ओवर्स भी लिमिटेड नहीं है, आपकी 70 साल की उम्र है तो 70 साल तक आपको बॉल्स आती रहेंगी। ये एक बेसिक चीजें थी जो मुझे बतानी थी, दो तीन चीजों जो मैं इन चीजों को सम अप करूंगा। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कोई ना कोई एक कोपिंग मैकेनिज्म रखिए। पहला आपको एक कोई एक हॉबी डेवलप करनी चाहिए, फ्रेंड्स फैमिली इनके साथ वक्त बिताइए, अपने आसपास जुड़े रहे अपने जो करीबी लोग हैं उनका महत्व जानिए, आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके सक्सेस फेल्योर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर न डालें, उनको लाइफ के साथ एक बेहतर जिंदगी जीने का सिखाएं ना, जबकि बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ नंबरों पे या फिर मार्क्स पे फोकस करना ना सिखाए। हाँ, नंबर इंपॉर्टेंट है, आ जाएंगे कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये विश्वास रखिए कि नहीं आएंगे तो हो सकता है कुछ और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जिनका यूज करके आप अपने इस तनाव को कम कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। उनमें से पहला होता है यूट्यूब पे कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनको जरूर सुनिए। जैसे मेरा वन ऑफ द फेवरेट संदीप महेश्वरी है, मुनीबा मजारी का नाम अगर आपने सुना होगा। मुनीबा मजारी पाकिस्तान की एक ऐसी महिला है जिनका 18 साल की उम्र में शादी हो जाता है, उसके बाद एक एक्सीडेंट में उनका 2 साल तक वो बेड रिडन हो जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड पूरा उनका डैमेज हो जाता है, अभी भी वो व्हील चेयर पे है। लेकिन उसके बाद भी उस सिचुएशन से उठने के बाद वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है यूएन वुमेन में। उनकी एक बहुत अच्छी स्पीच है यूट्यूब पे जिसपे वो कहती है कि लाइफ इज नॉट नॉट अबाउट व्हाट वी थिंक, राइट, डोंट डाई बिफोर यू लिव, अपने जिंदगी जीने से पहले नहीं मरना है, राइट, डोंट डाई बिफोर यू लिव, वी लीव दिस वन रूटीन ऑफ द डे फॉर 75 ईयर्स एंड वी कॉल इट लाइफ। ऐसा नहीं होता है, आप सिर्फ एक सिंपल रो रो के जीने को जिंदगी कहते हैं, जिंदगी नहीं है। बाहर जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, ये एक्चुअल में जिंदगी है। उसके अलावा मैंने अरुणिमा सिन्हा का नाम लिया जो कि एक एक्सेलेंट उदाहरण है, बहुत पुराना एक वर्ल्ड वॉर के टाइम का एग्जाम्पल है, कैरोली टकाकस का नाम अगर आपने सुना होगा। कैरोली टकाकस जर्मनी जर्मनी की आर्मी में एक सिपाही होते थे और वर्ल्ड वॉर, वो एक बहुत अच्छे शूटर थे, वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने के साथ ही ओलंपिक पोस्टपोन हो जाता है, वो लड़ाई में चले जाते हैं, उनके हाथ में एक ग्रेनेड पड़ जाता है, उनका राइट हैंड जो मेन शूटिंग हैंड था वो खराब हो जाता है। उसके बाद उनके सारे जो ड्रीम्स थे ओलंपिक जीतने के, ओलंपिक में गोल्ड जीतने के, वो धराशायी हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया, थक के हार के नहीं बैठा, क्या किया, मेरे पास अभी लेफ्ट हैंड बचा है, लेफ्ट हैंड से शूटिंग स्टार्ट की। लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करते करते जब नेक्स्ट ओलंपिक हुआ 1952 में, 1938 के बाद 1952 में सीधा ओलंपिक होता है, उस वहां पे वो गोल्ड मेडल लेके आते हैं जो कि उनका मेन हैंड नहीं होता है। जब एक कैरोली टकाकस जो अपने लेफ्ट हैंड से, जबकि राइट हैंड उनका मेजर हैंड है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो आप क्या 12th में कम नंबर आने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते क्या? इनफैक्ट ये आपको इम्पीटस रहना चाहिए, आपको बारीकी के साथ देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ पे सुधार की जरूरत है, अपने दिमाग को किस तरह से ट्रेन करना है, अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है। लाइफ में सब कुछ ट्रेनिंग है और कुछ नहीं, क्योंकि आज हम जो भी हैं वो हमारी बचपन से लेकर अभी तक जो हमें ट्रेनिंग दी गई है उसके हम प्रोडक्ट हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपनी लाइफ में पूरे एजुकेशन में 12th क्लास तक हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किया, 10th क्लास तक मैं अपने गाँव से पढ़ाई किया जहाँ पे सिलेबस का 3 से 4 चैप्टर ही कम्प्लीट हो पाता था, बाकी चीजें हमें खुद से करनी होती थी। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे साथ 9th क्लास में हुई थी, मेरे किसी दोस्त ने कहा था, मैंने कहा कि मुझे नहीं आता, उसने कहा तुम्हें सीखना तो आता है, तुम्हें सीखना तो आता है, किसी किसी टीचर ने मुझे बताया था कि आपके अंदर एक इंक्वायरिंग माइंड है, तो अगर आप चीजों को खोजते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है अगर हम सॉल्यूशन खोजते हैं तो सॉल्यूशन मिलता है, अगर कोई सवाल है आप जवाब ढूंढेंगे तो जवाब मिलेगा। जैसे आपके पास स्ट्रेस है, आप परेशान है किसी चीज को लेकर, ढूंढने की कोशिश कीजिए क्यों परेशान है, उस परेशानी का वजह मिलेगा, जवाब जरूर मिलेगा, हो सकता है टाइम लगे, परेशानी उठानी पड़े, जवाब जरूर मिलेगा। जैसे ही जवाब मिला कि परेशानी किस वजह से है, उस परेशानी के कारण को दूर करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा चीज, स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, खुद को टाइम दो और अपने आसपास के लोगों से बात करो, अपने आप स्ट्रेस का। इसके अलावा स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो कि हम लोग कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, कॉम्पिटिशन की दुनिया में इग्नोर करते आए हैं। स्पोर्ट्स हमारी बॉडी की मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म सबको परफेक्ट करती है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई एक स्पोर्ट्स जो है जरूर साथ में रखें, या फिर कुछ रनिंग एक्सरसाइज। जब मैं करता था तैयारी, मैं डेली सुबह आधे घंटे कम से कम जरूर एक्सरसाइज करता था। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जब बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आप पॉजिटिव मोटिवेटेड फील करते हैं। आप खुद ही सोचो कि आप सो के उठा है कोई इंसान, जाके चुपचाप स्टडी टेबल पे बैठ गया, उसके माइंड में तो ऐसे ही ख्याल आएंगे ना, एनर्जी है नहीं, लेथार्जिक फील हो रहा है, कहाँ से कुछ कर पाएगा, राइट? इसलिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर। उसके अलावा मैंने मेडिटेशन की बात की, उसके अलावा थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की बात की। हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आप किसी को भी मानते हो, किसी को भी मानते हो, भगवान अल्लाह जीसस क्राइस्ट किसी को भी मानते हो, उस पे भरोसा रखिए। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना ये मेरा पर्पस नहीं है। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है, जैसे एक्टिवेट, जिस तरह से वो एक्टिवेट होता है उसी तरह उसका बिलीफ सिस्टम बनता है। अगर आप अपनी बिलीफ सिस्टम में भगवान पे भी विश्वास करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ये हमको पूरा भरोसा रहता है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे हमें लगता है कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा पावर है जो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और जब हम इस पे भरोसा करते हैं तो फिर हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, हमारी जो परेशानी है, वो कम होने लगती है। आप इस चीज को ट्राई करके देखिएगा, अगर बारीकी से एनालाइज करेंगे आपको रियलाइज होगा कि आप अगर भगवान पे भरोसा रखते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और सही वक्त का इंतजार कीजिए, सही वक्त, सही अपॉर्चुनिटी, सही अवसर का इंतजार कीजिए, आपके साथ बेस्ट होगा। तो इन्हीं के साथ मैं अपने टॉक को खत्म करने से पहले, कुछ क्वेश्चंस हैं, स्पोर्ट्स और स्टडीज को मैनेज कैसे करें। मैंने इस टॉपिक ऑलरेडी टच किया है कि स्पोर्ट्स के लिए आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा। देखो, दूसरी चीज जो स्ट्रेस आती है, पढ़ाई के टाइम पे जो स्ट्रेस आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ाई के टाइम पे स्ट्रेस दो तीन रीजन से आता है। अगेन, स्ट्रेस के कारण को जानना पड़ेगा। एक तो हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तीसरा चीज, जो हमारे पास बर्डन है, जो पढ़ाई के लिए हमारा टास्क है, उसको मैनेज नहीं कर पाते। इसका बेस्ट और सिंपल आसान सा तरीका है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन लाने के लिए आपके अंदर दो चीजें चाहिए। एक तो आपकी डिजायर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो आप करना चाहते हो उसके लिए इस कदर आप तत्पर हो, इस कदर उस चीज के लिए पागल हो कि आपके दिमाग में कुछ आए ही नहीं। सेकेंड इसका है, जो रिलेटिवली आसान तरीका है, कि आप एक टाइम टेबल बना, ठीक, टाइम टेबल छोटे छोटे बॉक्सेस में बांट के, आधे घंटे का, 40 मिनट का, एक एक पीरियड बना के, कि मैं इस टाइम पे अपना बेस्ट करूंगा। और बीच में अपने लिए ब्रेक भी बनाना है। इस तरह से अगर आप पढ़ाई को लेंगे, इस तरह से अगर पढ़ाई को प्रोसेस की तरह लेंगे, तो कभी भी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी उस सिचुएशन पे नहीं जाएंगे। बाकी और किसी का कोई सवाल हो तो यहाँ पे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस को डील करने के लिए मैंने जितना मेरे नॉलेज में या फिर मेरे अंडरस्टैंडिंग में चीजें थी, उनको कवर करने की कोशिश की है। आई होप इन सब से आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा। अगर आप में से एक भी बच्चा, एक भी स्टूडेंट या एक भी पेरेंट इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर पाए, इन चीजों का उपयोग कर पाए, और आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये हेल्पफुल हो पाए, बच्चों को एग्जाम के रिजल्ट से जो उनको जो मानसिक रूप से वो जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, उससे वो अगर बाहर निकल पाए, तो आई वुड फील वेरी फॉर्चुनेट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने ये जो एक सीरीज, फेसबुक लाइव की सीरीज स्टार्ट की थी, और वो आगे चलता रहेगा। इसमें हम लोग डेली आधे घंटे ये बात करते हैं कि किस तरह से बच्चों में एग्जाम से उत्पन्न जो तनाव या स्ट्रेस है, उसको कम किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। आप सभी का फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।